टुडे इज फिफ्थ ना, फिफ्थ दिसंबर 2023, फिफ्थ दिसंबर 2023 डे इज ट्यूसडे, ट्यूसडे है आज एंड टाइम इज अबाउट 5:10 to 5:15 PM इन लखनऊ. आई एम अमित सर विद मी अंकित सर ऑन बिहाफ ऑफ दिस समित लायन शूट. वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आवर फोर्थ लेक्चर. दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996. This is a replacement of 1940s Act. पढ़ना जरूरी इसलिए था, केवल दिल्ली के लिए ही नहीं है ना. हम लोग के टॉपिक में मैंने फिर बार बार कहा ADRS है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CPC का और पूरा क्वेश्चन उस पर बनता है. तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम समझने के लिए सबसे बड़ा समझना है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन. उसी को रखते हुए रेफरेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था. और चूंकि अभी कोई यूपी की वैकेंसी नहीं है फिलहाल आज की डेट तक, आती तो रोज है ऑफिस में हमारे वैकेंसी की खबरें है ना, मगर वो नहीं आती. आ जाएगी
217 या 218 की आती
है, आ रही है. बहुत आई गई यादें, अब तो चले आना.
जिसको कहते हैं बढ़ के 300 तक हो जाएगी.
और सबसे मजेदार बात है, आप सबको 2-3 मिनट का एक इंटरटेनिंग वो बताएं. मुझे बच्चे बोलते हैं सर जल्दी आ रही है, कंप्लीट करना है मैटर. अच्छा, ये चीज मैं 15 साल से कर रहा हूँ. हर बार नया बच्चा होता है, हर बार कोर्स जल्दी खत्म करना किसी के लिए. अरे सर आराम से, अभी तो हमारा थर्ड सेमेस्टर फोर्थ, कहाँ सर चक्कर में आप दौड़ा रहे हैं. अब हम लोग को क्या करना है, बैलेंस, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि हम लोग की स्थिति ना माझी की तरह, माझी माने नाविक ना. माझी कब किनारा पाता है, जब सबको किनारे पहुंचाता है ना. और हम तो किनारे पहुंचाते तब तक कुल्लू को लाद लेते हैं, फिर नदी में आ जाते हैं. तो अल्टीमेटली ये चलते रहने वाली प्रक्रिया है और जो चलती रहेगी. फिलहाल आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आज आखिरी इसका हम लोग करेंगे, फोर्थ टॉपिक है. जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं आर्बिट्रेशन, हम सब के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया है. आर्बिट्रेशन इज एन प्राइवेट लिटिगेशन, इट इज अ फोरम फॉर प्राइवेट लिटिगेशन चूजन बाय पार्टी एंड दिस इज चूजन एज पर द सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. इफ बोथ पार्टीज हैव मेड एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट देन आर्बिट्रेशन एक्ट विल अप्लाई एंड कोर्ट. If one party approaches to the court, Section 8 provides that court will send them for arbitration. If there is a valid arbitration clause, ठीक. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि arbitrator का appointment होता है, ये sole parties की discretion है कि खुद क्या करें, arbitrator को appoint करें. फिर अगर नहीं appoint कर पा रहे हैं तो उसमें फिर high court का अपना role आ जाता है. वो लोग और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट एक्रीडिएशन देगी, इंस्टीट्यूशंस बनाएगी. फिर हम सब ने डिस्कस किया कि अगर आर्बिट्रेशन के अपॉइंटमेंट को आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो भी आप कहें उसके अपॉइंटमेंट को लेके कुछ है तो वी कैन चैलेंज, और ये आर्बिट्रेटर के यहाँ ही चैलेंज होगा. फिर हम लोग धीरे से डिस्कस किए थे सेक्शन 20 में कि क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि CPC तो नहीं लग रहा है ना, CPC इज नॉट अप्लीकेबल हियर, CPC नहीं लग रहा. तो फिर पार्टीज डिसाइड करें व्हाट प्रोसीजर दे वांट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. आर्बिट्रेटर कौन से प्रोसीजर अडॉप्ट करे ये कौन बताएगा, खुद पार्टी. अगर पार्टी नहीं बता रही तो आर्बिट्रेटर खुद कर लेता है. फिर हम लोगों ने देखा था कि आर्बिट्रेशन में दो पार्टी होती है, क्लेमेंट और एक डिफेंस. तो एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, इसी को प्लीडिंग कहते. तो प्लीडिंग आर्बिट्रेशन में क्या हुई, जैसे सिविल में अभी हम पढ़ाएंगे प्लीडिंग क्या होती है, प्लेंट एंड WS. आर्बिट्रेशन में प्लीडिंग जब वर्ड आएगा तो क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस. ठीक, ये अच्छा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस 6 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए. जो कुछ भी उनका रिटर्न डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब कितने महीने में कंप्लीट हो, 6 महीने. उसके बाद आर्बिट्रेटर, अगर एक पार्टी अपीयर हो रही नहीं हो रही दूसरी, तो हम लोग या तो डिसमिस करेंगे या एक्स पार्टी प्रोसीड कर जाते हैं. सेक्शन 25 याद है सबको. फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके आगे हम सब चले और देखा कि भाई एक फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है 29A में, तेजी से करेंगे। फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन में, जनरली आर्बिट्रेशन में, ऑर्डिनरी आर्बिट्रेशन में ओरल आर्ग्यूमेंट होते हैं, है ना, मगर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में ओरल आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, क्योंकि 6 महीने में ही कंप्लीट होना है। ऑर्डिनरी जो आर्बिट्रेशन है उसके लिए 1 साल का लिमिटेशन है, 12 मंथ, सॉरी कितना महीना, 12 मंथ, बट फास्ट ट्रैक के लिए कितना है, 6 मंथ, ठीक है। फिर हम लोग ने और आगे चले तो 31 पढ़ लिया। 31 में कहा था इंटरिम अवार्ड की भी बात की गई। 31 में क्या बोला गया, इंटरिम अवार्ड की बात की गई। इंटरिम अवार्ड करने के बाद फिर कहा अगर पेमेंट ऑफ मनी है, आर्बिट्रेशन इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, तो फिर वहां इंटरेस्ट पेमेंट की भी बात की गई है। फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन टू डेट ऑफ आर्बिट्रेशन एज द आर्बिट्रेटर थीम्स फिट रीजनेबल, वो करें, मगर उसके बाद आर्बिट्रेशन की डेट से एग्जीक्यूशन यानी पेमेंट तक के लिए जो भी उसने इंटरेस्ट डिसाइड किया उसे 2% इनहेंस्ड होके मिलेगा। परसेंटेज यानी डिसाइड किया का जो रीजनेबल हो, मगर डेट ऑफ अवार्ड से लेकर डेट ऑफ पेमेंट तक में जो इंटरेस्ट होगा वो मेन इंटरेस्ट से कितना इनहेंस हो जाएगा, 2%, ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई क्लरिकल वगैरह मिस्टेक है, कुछ अर्थमेटिक क्लरिकल मिस्टेक है, तो आप उसी आर्बिट्रेशन अवार्ड में, आर्बिट्रेटिक जो ट्रिब्यूनल है उसमें आप फाइल कर दो, मेरे ख्याल से विद इन 15 डेज था, और 33 में वहां से आप क्लरिकल अर्थमेटिक या इस तरह के मिस्टेक्स दूर करा लो। उसके बाद फिर आपके पास एक रेमेडी है, इफ यू वांट टू सेट असाइड द आर्बिट्रेशन क्लॉज, आर्बिट्रेशन अवार्ड, अगर आप चाहते हो इफ एनी पार्टी टू सच आर्बिट्रेशन, आइदर क्लेमेंट आर डिफेंडेंट, इफ एनी पार्टी हु इज एग्रीड बाय सच आर्बिट्रेशन अवार्ड, जो खुश नहीं है आर्बिट्रेशन अवार्ड से, वो चाहे तो सेक्शन 34 में उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज कर सकता, कितने महीने के भीतर, 3 मंथ, आई थिंक 3 मंथ है ना, 3 महीने के भीतर ग्राउंड ऑफ चैलेंज दिया है, डिसऑनेस्टी, अपॉइंटमेंट सही नहीं था, आर्बिट्रेबल मैटर नहीं था, ठीक है, बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन चले गए, जितना मैटर उनको दिया गया था उससे बाहर चले गए, इस तरह से ग्राउंड्स बनाए हैं। मगर उस ग्राउंड पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में टिक लगवा दिया था, क्या चीज टिक लगवाई थी, टिक ये लगाए थे कि एरर ऑन एप्लीकेशन ऑफ लॉ या री अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस इज नो ग्राउंड फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रेशन अवार्ड, क्योंकि लॉ का आर्बिट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो लॉ से अलग हटकर इक्विटी या जनरल सेंस पे इसको सॉल्व किया गया है। इसीलिए अवार्ड जो आर्बिट्रेटिव आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है वो एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, मगर जानते हैं आर्बिट्रेटर का कोई कहना तो मानेगा नहीं, इसीलिए सेक्शन 27 वो किसकी हेल्प लेता है, कोर्ट की, कोर्ट से कहता है तुम सम्मन भेजो, जब कोर्ट का सम्मन आएगा तो विटनेस आएगा ना, कोर्ट कह सकती जाइए आर्बिट्रेटर के सामने अपना एविडेंस रिकॉर्ड करिए, और हो सकता है आर्बिट्रेटर अगर आपको नोटिस भेजे तो आप जाएं या, मगर अगर वही थ्रू कोर्ट सम्मन आ रहा है, इसीलिए देखिए 27 में किया दे दिया है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कैन टेक असिस्टेंस ऑफ कोर्ट इन ऑर्डर टू टेकिंग एन एविडेंस, क्योंकि कोर्ट की मोहर लगने के बाद चीजें मजबूत हो जाती हैं। कोई भी इसी में नीचे जाके एक्सप्लेनेशन दिया है 34 में कि कोई भी जो आर्बिट्रेशन अवार्ड होगा इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, देखिए नीचे एक्सप्लेन कर दिया, मिला सबको, 34 में कहा था पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अवार्ड नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी डिफाइंड नहीं, फिर भी कहा पब्लिक पॉलिसी क्या है, करप्शन, डिसऑनेस्टी, करप्शन, इस तरह की चीजें अगेंस्ट क्या होती हैं, पब्लिक ऑफिस, घूस लिया आर्बिट्रेटर, वो भी क्या है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो देखिएगा 34 में लिखा होगा पब्लिक पॉलिसी क्या है, 3-4 चीजें एक्सप्लेन की हैं, मिल गया सबको, 34 का किस जगह है,
ये है पार्ट, ये सब सेक्शन 2B में, और बी का जो है सब फर्स्ट सेकंड थर्ड में पब्लिक पॉलिसी,
एकदम आप सब समझ गए, पब्लिक पॉलिसी देख लीजिएगा, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है इसी में बताया गया, वो भी आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक।
एक्सप्लेनेशन 1 का है ये,
एक्सप्लेनेशन 1 का है ना, इसको टिक कर लीजिएगा, 34 पूरा पढ़िएगा। फिर हम लोग आ गए थे क्योंकि आज इसको फिनिश करना है, तो आइए थोड़ा सा और आगे हम सब बढ़ते हैं और 35 पे आइए। 35 बताइए,
चैप्टर 8
पढ़ चुके हैं शायद,
हाँ हो चुका है, फाइनलिटी और
इन्फोर्समेंट। 37 पे आइए। अच्छा, ये फाइनल होगा और इसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा? एज इफ इट वर अ डिक्री। जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन है उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन के डिसीजन को क्या बोलते हो? अवार्ड। और अवार्ड को इन्फोर्स कहां से कराते हैं? अगर इन्फोर्स नहीं हो रहा है तो एग्जीक्यूशन थ्रू कोर्ट, और कोर्ट के लिए ऑर्डर 21 है। जब सीपीसी अब इसके बाद पढ़ाएंगे तो कौन सा है ऑर्डर? 21 है, ठीक है। एग्जीक्यूशन थ्रू कोर्ट है, ऑर्डर 21 में है और उसी के थ्रू एग्जीक्यूट कराया जाएगा। अब उसके आगे अभी एग्जीक्यूशन में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ में हम लोग तो आ ही जाएंगे, सब पढ़ेंगे तो जानेंगे। उसके बाद आ जाइए 37 ना, अपील। अब देखें अपीलेबल ऑर्डर। देखिए फिर से एक बार बता दूं, शायद मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं इसीलिए बार बार कुछ चीजें रिपीट करते हैं। स्वांत सुखाय के लिए, स्वांत सुखाय मतलब अपने सुख के लिए, कि 34 में सेट असाइड करने के लिए आप सिंपली कोर्ट में गए हैं। कोर्ट वो कोर्ट है जहां पर अगर आर्बिट्रेशन में मैटर ना आता तो जिस कोर्ट में वो फाइल होता ट्रायल के लिए उसी कोर्ट में सेट असाइड करने जा रहे हैं। मगर अब यही जो कोर्ट के डिसीजन है, जो भी सेट असाइड करने का डिसीजन उन्होंने दिया नहीं दिया, कोर्ट के डिसीजन की आप क्या कर सकते हैं? अपील करेंगे। तो कोर्ट के डिसीजन की कहाँ अपील होगी? जहाँ उस कोर्ट की सिविल अपील होती है। सिविल जज की अपील कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। डिस्ट्रिक्ट जज की अपील हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट की अपील, का सब कुछ है, सब अपीलें करोगे। चलो नीचे आओ। हाँ 37
चैप्टर 9 अपील्स सेक्शन 37 अपीलेबल ऑर्डर्स सब सेक्शन 1 Not withstanding anything contained in any other law for the time being in force, an appeal shall lie from the following orders and from no others.
An appeal lies from the following order and no other. Appeal वहीं लाई होगी जहां पर उस civil court की appeal जाती है। तो देखिए किस किस की appeal हो रही है।
To the court authorized by law to hear appeals from original decrees of the court passing the order, namely A. Refusing to refer the parties to arbitration under section 8.
Refusing to refer party under arbitration. याद है section 8 में? आप एक पार्टी करी सर कोर्ट में मत करिए, ये कोर्ट हमें, हम लोग को कहाँ भेजिए आप? ट्रिब्यूनल के पास। और कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, कहा वैलिड आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है। तो आप उस रिफ्यूजल का ऑर्डर कहाँ पर अपीलेबल होगा? उस कोर्ट की जहाँ अपील होती थी, ये अपीलेबल ऑर्डर है सेक्शन 8। हाँ।
B. Granting or refusing to grant any measure under section 9.
ठीक है।
C. Setting aside or refusing to set aside an arbitral award under section 34. Subsection 2. An appeal shall also lie to court from an order of the arbitral tribunal. A. Accepting the plea referred to in subsection 2 or subsection 3 of section 16 or B. Granting or refusing to grant an interim measure under section 17, subsection 3, no second appeal shall lie from an order passed in appeal under this section, but nothing in this section shall affect or take away any right to appeal to the Supreme Court.
अब देखिए कह रहा है कुछ अपीलेबल ऑर्डर है और अपील वहीं लाई करेगी जहां उस कोर्ट के अगेंस्ट आप लोग अपील करते हैं। और ये अपीलेबल ऑर्डर किस सेक्शन में लिया है? 37। मगर कहा कुछ भी हो भाई, सुप्रीम कोर्ट में SLP तो कभी बार नहीं हो सकती ना। जब आप सुप्रीम कोर्ट की 136 पढ़ते हैं SLP स्पेशल लीव पिटीशन, तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इन सब की भी क्या हो सकती है? SLP। और चलिए 38
ये हो गया। आप इसके बाद मिसलिनियस,
मिसलिनियस में भी बताते चलिए।
चैप्टर 10 मिसलिनियस सेक्शन 38 डिपॉजिट्स
छोड़ दीजिए,
39 भी छोड़ी। लियन ऑन आर्बिट्रल अवार्ड एंड डिपॉजिट्स एज टू कॉस्ट 39।
अच्छा, लियन होता है, लियन माने भार, लियन माने भार। आर्बिट्रेशन अवार्ड पे आर्बिट्रेटर का लियन होता है। आर्बिट्रेटर की फीस अगर नहीं जमा कर रहे हो, आर्बिट्रेटर की फीस कौन जमा करेगा भाई? जो पार्टी लिखा है ना, अगर आर्बिट्रेटर की फीस नहीं जमा हो रही है तो आर्बिट्रेटर का अवार्ड तो पास हो गया, तो आर्बिट्रेटर का उस अवार्ड पे क्या हो जाएगा, लियन। तो जब एग्जीक्यूशन होगा तो सबसे पहले कोर्ट किसका फीस दिलवाएगी, पहला वो भी आ गया था, हमारा भी दिलाइए। इन लोगों का तो अवार्ड हो ही गया होगा, जो हुआ ये सब हमसे बस करवाते गए, कहे फास्ट ट्रैक हो, फास्ट ट्रैक हम हो गए और फीस नहीं दिए, तो सर हमारा भी रिकवरी कराइए। तो ये 38 में इसी की बात की गई, 39 ना, हाँ, और छोड़ दीजिए।
सेक्शन 40, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज बाय डेथ और ऑफ पेनल्टी देयर टू।
ध्यान रखिएगा सेक्शन 40, अगर पार्टी की डेथ हो जाए
तो पार्टी,
डेथ ऑफ पार्टी, पार्टीज की डेथ होने पर आर्बिट्रेशन नहीं रुकता, इसको पढ़ दीजिए।
सब सेक्शन 1, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल नॉट बी डिस्चार्ज बाय द डेथ ऑफ एनी पार्टी देयर टू either as respects the deceased or as respects any other party, but shall in such event be enforceable by or against the legal representative of the deceased।
yani ek bar valid arbitration chalu ho gaya to parties ki death hone pe wo rukega nahi, uski jagah kisko substitute kar do, legal रिप्रेजेंटेटिव, वो अवार्ड एलआर के अगेंस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एलआर क्या है सब अभी सीपीसी पढ़ाएंगे। चलिए
सब सेक्शन 2, द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शैल नॉट बी टर्मिनेटेड बाय द डेथ ऑफ एनी पार्टी बाय हुम ही वाज अपॉइंटेड। सब सेक्शन 3, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी राइट ऑफ एक्शन इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द डेथ ऑफ अ पर्सन।
अच्छा, अगर कुल मिलाकर डेथ से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अबेट नहीं होती, मगर एक मामले में तो हो ही जाएगी, व्हेन राइट टू सू डजंट सर्वाइव, ये सीपीसी में हम पढ़ाएंगे, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि अभी छोड़ दी, बस इतना ही समझ लीजिए और चलिए 41।
सेक्शन 41, प्रोविजंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, पढ़ने इसको। सब सेक्शन 1, वेयर इट इज प्रोवाइडेड बाय अ टर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू विच एन इंसॉल्वेंट इज अ पार्टी दैट एनी डिस्प्यूट अराइजिंग देयर आउट और इन कनेक्शन देयर विद शैल बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन, द सेट टर्म शैल इफ द रिसीवर अडॉप्ट द कॉन्ट्रैक्ट be enforceable by or against him so far as it relates to any such dispute। Subsection 2,
छोड़ दीजिए 42 क्या है देख लीजिए,
jurisdiction,
ठीक है इसको पढ़ दीजिए।
Section 42, jurisdiction, notwithstanding anything contained elsewhere in this part or in any other law for the time being in force where with respect to an arbitration agreement any application under this part has been made in a court, that court alone shall have jurisdiction over the arbitral proceedings and all subsequent applications arising out of that agreement and the arbitral proceedings shall be made in that court and in no other court।
जिस कोर्ट में अगर आर्बिट्रेशन में ना केस जाता तो सिविल कोर्ट में जाता ना, तो जिस कोर्ट में जाएगा सारा मैटर का डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जिम्मा उसी के पास है, ये उसी कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है। केवल 43 टिक करिए।
42 कैपिटल ए, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन,
जो भी आर्बिट्रेशन को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिले आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल उसको किसी और को डिस्क्लोज, पार्टीज ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन बहुत सी चीजें बताती हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द मैटर। आप लोग तो पढ़े हैं ना, अभी तो एविडेंस खत्म नहीं हुआ था 126 ना, प्रिविलेज्ड, ये भी तो उसी तरह है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी गई है आर्बिट्रेटर को दे कांट डिस्क्लोज इट, देख लीजिए।
नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द आर्बिट्रेटर द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन एंड द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑल आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट अवार्ड वेयर इट्स डिस्क्लोजर इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड।
जो प्रोसीडिंग्स में बात कही गई की गई इस सब के ऊपर बाउंडिंग है, चाहे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल या पार्टी, वो सब कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, उसका डिस्क्लोजर नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी वाला देखिए कब ऐड किया गया है, 2019 का है ना ये, इसीलिए ऐड किया गया क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती थी। तो क्या आप इनकरेज हो गए, सोचोगे यार आर्बिट्रेशन पे जाएं, कुछ अनसर्न हमको बोलना ही पड़ेगा, उसके भी आप पर ऐसा ना हो कि हमारे अगेंस्ट क्या फाइल हो जाए, कोई केस चालू हो जाए, कुछ और चालू हो जाए। इसके लिए कहा गया कि प्रमोट करो, इनकरेज करो, कॉन्फिडेंशियल रहेगा जो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जो कुछ कहा गया किया गया, एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन जो अवार्ड में लिखा गया उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी चीज़ें प्रोसीजर में जो भी बोली गई वो सब केस में रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, दे आर नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर। इसीलिए 2019 में कॉन्फिडेंशियलिटी नाम का ये टॉपिक टर्म ऐड किया गया। और चलिए
42 कैपिटल बी, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ।
आर्बिट्रेटर जो भी एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये भी 2019 से ऐड किया गया। टू प्रोटेक्ट द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर को प्रोटेक्ट रखा जाएगा, उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। पढ़ दीजिए,
नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द आर्बिट्रेटर फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट और द रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर।
जो भी गुड फेथ में किया गया वो सब उनको प्रोटेक्ट करेगा, जज कांट डू रॉन्ग, गलत काम नहीं करता है। इसी नोशन पे अगर आप सबको याद हो जो ओल्ड आईपीसी है, ओल्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब आजकल में बिल उला गया, ठीक है, उसमें 50 अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जो ओरिजिनल आए तो उसमें कितने अमेंडमेंट मूव किए गए हैं, मैंने आपसे कहा था 100 अमेंडमेंट के करीब फिर से उसमें मूव किया, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, उसमें लिखा था कि जो अगर जज गलत सलत निर्णय देगा और अगर इल मोटिव है तो सजा प्रिस्क्राइब थी। तो आईपीसी कह रहा है, जज कह रहा होगा यार आईपीसी में हम दूसरे को सजा देने जा रहे थे कि हम खुद ही सजा पाने के लिए आए, ये भाई नया देश है, नया संकल्प है, नई योजनाएं चल रही हैं, तो उसमें उनके लिए तो वही सबसे बड़ा चैलेंज था। 18 स्टेट्स ने ऑब्जेक्शन उसी पे तो डाला था कि ये भाई जज को आप इस तरह की सजा मत दीजिए। यहाँ पे देखिए ये लिखा है, और चलिए
सेक्शन 43 लिमिटेशंस। सब सेक्शन 1, द लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल अप्लाई टू आर्बिट्रेशंस एज इट अप्लाइज टू प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। सब सेक्शन 2, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन एंड द लिमिटेशन एक्ट 1963 एन आर्बिट्रेशन शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड ऑन द डेट रेफर्ड टू इन सेक्शन 21। सब सेक्शन 3, वेयर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज सबमिट फ्यूचर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन provides that any claim to which the agreement applies shall be barred unless some step to commence arbitral proceeding is taken within a time fixed by the agreement and a dispute arises to which the agreement applies. The court, if it is of opinion that in the circumstances of the case undue hardship would otherwise be caused and notwithstanding that the time so fixed has expired, may on such terms, if any, as the justice of the case may require extend the time for the period of it as it thinks proper. Subsection 4, where the court orders that an arbitral award to set aside the period between the commencement of the arbitration and the date of the order of the court shall be excluded in computing the time prescribed by the Limitation Act 1963 for the commencement of the proceeding including arbitration with respect to the dispute so submitted.
लिमिटेशन कल से चालू करना है। लिमिटेशन एक्ट में 27 सेक्शंस हैं, प्रोवाइडेड विद द एक वन शेड्यूल जिसमें भी 137 आर्टिकल्स हैं। दो दिन लगेगा, ठीक, कहते तो कम ही है, जाता ही करता है, ठीक। यहाँ क्या कह रहा है देखिए, लिमिटेशन एक्ट जब शुरुआत में ही कल पढ़ाएंगे तो लिखा है दिस लिमिटेशन एक्ट विल अप्लाई इन अ कोर्ट प्रोसीडिंग, और ये आर्बिट्रेशन कोर्ट। हाँ, अगर किसी स्पेशल प्रोसीडिंग में लिमिटेशन एक्ट को लगाना हो तो उस एक्ट में लिखा होना अगर ये 43 ना लिखा होता तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता, इसीलिए 43 स्पेसिफिकली लिखा गया, और लिखा गया कि लिमिटेशन एक्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन वाले मैटर्स हैं सब तो सिविल मैटर है ना, और सिविल मैटर पे क्या अप्लाई होता है भाई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज्यादा ज्यादा कितना दिन तक, आज ब्रीच हुआ कितना 3 साल है ना, अनलिमिटेड नहीं है ना कि आप जब चाहे चले आए। तो यहां भी कह रहा आर्बिट्रेशन एक्ट में भी वही तो मैटर आए हो लेके, तो यहां पर भी सेम लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। हाँ, अगर आर्बिट्रेशन बाद में कैंसिल हो गया, आर्बिट्रेशन अवार्ड मानो सेट असाइड हो गया, 34 में क्या था, एक आर्बिट्रेशन अवार्ड है, मान लीजिए ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट था और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने के 3 साल के भीतर सिविल सूट आ जाना चाहिए, मान लीजिए 2 साल बाद पार्टीज ने आर्बिट्रेशन में चली गए, ठीक, दोनों पार्टी आर्बिट्रेशन किए, एक आर्बिट्रेशन अवार्ड आ गया, एकदम परफेक्ट आ गया, मगर उसको अपोजिट पार्टी ने सेट असाइड कर दिया। अब जब अपोजिट पार्टी ने सेट असाइड कर दिया, 3-4 साल लगा होगा इसमें, अब क्या लिमिटेशन तो क्या हो गया, बार हो गया ना। तो यहाँ कह रहा है 43 में कि जितने दिन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चली है उतने दिन लिमिटेशन जो पीरियड है उसको क्या कर दो, वेव कर दो, खत्म कर दो। यानी हमने कहा 2 साल बाद स्टार्ट हुआ था ना आर्बिट्रेशन, जो फाइनली आर्बिट्रेशन जब आया तो उसके बाद सेट असाइड हो गया, तो 2 ही साल माना जाएगा लैप्स किया गया। अब उसके बाद पार्टी फिर फ्री है कहाँ ले जाने को, फिर से सिविल कोर्ट में जाओ। तो देखिए 43 का लास्ट वाला फिर पढ़ दीजिए, सबसेक्शन 4
ऑफ सेक्शन 43, वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट एन आर्बिट्रल अवार्ड बी सेट असाइड द पीरियड बिटवीन द कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट shall be excluded in computing the time prescribed by the Limitation Act 1963 for the commencement of the proceeding including arbitration with respect to the disputes so submitted.
3 साल हमने कहा breach of contract के लिए कितना prescribed period? 3 years पढ़ाएंगे कल से, 3 साल है। अब 3 साल में 2 साल बाद arbitration agreement था तो arbitration में चली गई दोनों party। अब arbitration को 2 साल लगा solve करने में, solve करके arbitration award आया, total कितना हो गया, 4 साल हो गए ना, 2 साल पहले ही बीत चुका था, 1 साल बचा था, मगर किस में चले गए आप, आर्बिट्रेशन में। अब 2 साल बाद अवार्ड आया, अवार्ड आने के बाद फिर उस अवार्ड को सेट असाइड कराने के लिए अपोजिट पार्टी चली गई चैलेंज करने, कोर्ट ने 6 महीना लिया और उसको क्या कर दिया, सेट असाइड। अब टोटल वेसेज ऑफ टाइम कितना हुआ है आर्बिट्रेशन में, 2 ईयर्स प्लस 6 मंथ, इसको प्रिस्क्राइब पीरियड से हटा दीजिए। प्रिस्क्राइब पीरियड कितना था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 3 साल, 2 साल बाद आप आर्बिट्रेशन में आए थे, माना जाएगा कुल टोटल कितना बीता है प्रिस्क्राइब पीरियड, 2 ही साल, अभी भी साल बाकी है, कोई भी पार्टी चाहे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिविल कोर्ट जा सकती है। यानी जितना समय आर्बिट्रेशन में लगा जो अल्टीमेटली कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया वो उसमें से प्रिस्क्राइब पीरियड में से डिडक्ट कर दीजिए। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। 43 कह रहा है लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस आर्बिट्रेशन पे भी अप्लाई होंगे। और चलिए आगे
सर।
हाँ बेटा।
सर 6 मंथ का क्या एडिशन था?
नहीं नहीं, 6 मंथ हमने वो कहा था कि कोर्ट में जब तुमने सर 34 में चैलेंज किया तो कोर्ट भी तो समय लेगी, मानो 1-2-4 महीना लिया सेट असाइड करने में, तो जितना समय कोर्ट ने भी लिया तो कह रहा कितना समय डिडक्ट होगा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कमेंस होने से लेकर कोर्ट जब उसको सेट असाइड कर दिए तब तक डिटेक्ट कर दो।
ओके सर।
हाँ, वो तब तक के लिए डिटेक्ट हो जाएगा।
पार्ट 1A कैपिटल ए।
पार्ट 1A कब ऐड किया गया, 2019 में ना, हमने क्या कहा था लीगल सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप, लीगल सर्विसेज आपके डोर स्टेप पे। आर्बिट्रेशन को कमर्शियल आर्बिट्रेशन किया गया है, आर्बिट्रेशन के लिए पूरा लीगल सर्विसेज को हम लोग कमर्शियल कर दिए, और 2019 के बाद एक आर्बिट्रेशन पूरा इंस्टीट्यूशन बनाने की बात आई, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में, न्यू दिल्ली नहीं, कहाँ पर भी बैठेगी, दिल्ली में है, आर्बिट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया का एक गठन हुआ, परमानेंट बॉडी होगी, उसके चेयरमैन होंगे, उसके सीईओ होंगे, उसमें आर्बिट्रेटर होंगे, उनको एक्रीडिएशन किया जाएगा, कुछ क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, उसमें ढेर सारे आर्बिट्रेटर होंगे, विदेश से देश से कोई भी आदमी चाहे तो सीधे वहां पहुंचे, फीस प्रिस्क्राइब्ड है वो दीजिए, चूज करिए आर्बिट्रेशन पैनल में और आपका मैटर वहीं फाइल होगा, वहीं से पूरा एकदम फोरम बना हुआ है, ऑफिस है, वहां आपका सब मैटर सॉल्व होकर अवार्ड आ जाएगा और अवार्ड भी वहां पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। इस तरह के इंस्टीट्यूशन की यहाँ कमी थी, केवल यहाँ दिल्ली आर्बिट्रेशन था, एक मुंबई में आर्बिट्रेशन था जो परमानेंट बॉडी थी, मगर एक इंटरनेशनल लेवल पे हमें बॉडी बनाने की जरूरत थी जिससे विदेश के लोग भी सस्ती आर्बिट्रेशन इंडिया में ले, और उसके लिए ही आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की गई है। इसमें जो लोग चेयरमैन होंगे वो उनका देखिए सी में लिखा है ना, आ जाने दीजिए, ना सी में लिखा है ना,
मेंबर मींस
देखिए सी में नहीं, वो काउंसिल पढ़ दीजिए, वो बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा,
काउंसिल मींस द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 43 कैपिटल बी,
ठीक है, और उसमें मेंबर उम्बर कौन होंगे देख लीजिएगा, लोग पढ़ लेंगे, चेयरमैन कौन होगा देखिए उसमें लिखा ना, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कहाँ है वो लिस्ट पूरी, 43 सी है ना, हाँ देखो 43 सी टिक कर लीजिएगा।
कंपोजिशन ऑफ काउंसिल,
अब देखिए आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनेगी इसका जो कंपोजिशन होगा, देखिए इसको बड़ा ऑथेंटिक बनाना था, इंडिया की सबसे बड़ी लीगल सर्विसेज कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने इसको रिकॉग्निशन दिलानी है तो इसमें किसको बैठाना पड़ेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का किसी रिटायर्ड जज को बैठाइए और हाई कोर्ट के जजेस को बैठाइए, तब उसकी ऑथेंटिसिटी पूरे वर्ल्ड लेवल पे होगी। इसीलिए देखिए इसमें सी में देखिए बताइए कौन कौन है,
43 कैपिटल सी कंपोजिशन ऑफ काउंसिल सब सेक्शन 1, द काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स नेमली ए, ए पर्सन हु हैव बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट और एन एमिनेंट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द कंडक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्बिट्रेशन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरपर्सन।
अब चेयरपर्सन कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किससे कंसल्टेशन करेगी, सीजेआई से, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरलाइन कीजिएगा, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेड एंड चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल, और चेयरमैन बनने के लिए मिनिमम योग्यता क्या है, सच पर्सन हैज बीन रहा हो सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जज, यानी इसके नीचे का लेवल का कोई बंदा चेयरमैन नहीं बनेगा। इसके साथ देखिए इसमें कुछ मेंबर्स वगैरह होंगे ना, पूरा सी पढ़ लीजिएगा, सी क्या करेंगे खुद इसको, बस ये एकदम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इसमें रॉकेट साइंस आपको पढ़ाई जाए, ये बड़ी नीतिगत टाइप की चीजें हैं, इसमें कौन बनेगा कौन ये रहेगा, तो इसको आप सब पढ़ ला लीजिएगा, सी अपने आप टिक कर लीजिए और बताइए,
सी पूरा छोड़ दें,
हाँ छोड़ दीजिए बच्चे पढ़ लेंगे,
फिर 43 डी ए ड्यूटी
पढ़ लोगे ना,
43 डी ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल,
अब समझ गए ना ड्यूटी और फंक्शन में क्या होगा, जितना अभी पुराना पढ़े यही सब तो है, रूल बनाना फॉर्मुलेट करना, कैसे आर्बिट्रेशन का रूल बनेगा वो सब बनाइए, कैसे आर्बिट्रेशन मैटर जल्दी सॉल्व करें, ये सब क्या काम होगा इसका, आर्बिट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया जो बैठेगी वो यही सब रूल एंड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करेगी। और चलिए
43 ई वैकेंसीज एटसेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ काउंसिल,
ठीक है,
F, resignation of members.
अच्छा ये मेंबर किसको रिजाइन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजाइन करके हटेंगे, अच्छा इसमें टर्म भी होगा, टाइम पीरियड देख लीजिएगा, 70 साल दिया है शायद, देखो उसमें चेयरमैन के लिए कितना साल है, देखो
चेयरपर्सन मेंबर ऑफ द काउंसिल अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर शैल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर अ टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच दे एंटर अपॉन देयर ऑफिस provided that no chairperson member other than ex-officio member shall hold office as such after he has attained the age of 70 years इन द केस ऑफ चेयरपर्सन एंड 67 ईयर्स इन केस ऑफ मेंबर.
ठीक है,
सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 43 कैपिटल सी.
43 कैपिटल सी जरूर पढ़िएगा. मेंबर अधिकतम उम्र कितने दिन तक? 67 और चेयरमैन
70
साल, 70 ईयर्स तक काम कर सकता है. और टाइम पीरियड इनका मैक्सिमम कितना होगा? 3 ईयर्स. या तो 3 साल पहले हो जाए या 70 या 67, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट की उम्र कितनी है? 65. तो माना गया है भाई रिटायर होने के बाद वो इसमें आएंगे, तो 3 साल दिया गया है, मगर मैक्सिमम कितने साल तक? 70 ईयर्स. और इसी तरह मेंबर के लिए रखा गया. ठीक है, और चलिए नीचे.
एफ ए, रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स, 43F. 43G, रिमूवल ऑफ मेंबर.
रिमूव कौन करेगा इनको? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रिमूव करेगी. जिसने अपॉइंट किया है वही इनको क्या करेगा? रिमूव करेगा. द पर्सन हु हैज अपॉइंटेड कैन रिमूव, तो वही रिमूव करेगा. ठीक है. इसके बाद आइए, अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ना,
उसके बाद उसे तो HIJK,
वो सब तो वही बता रहे हैं. वैसे तो पूरा अल्फाबेटिक होगा तो क्या करेंगे. ठीक है, आप इसके बाद सीधे चैप्टर सेकंड पे आइए,
पार्ट टू
पे आ गए. मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि इसमें देखिए 4 पार्ट हैं. पार्ट 1 रिलेट टू आर्बिट्रेशन, बड़ा क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट इस समय हो रहा होगा आपका. पार्ट 1A ऐड किया गया था 2019 में, रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, उसके कई कॉन्सिक्वेंसेज हैं क्यों किया गया, ये सब हमने आपको बताया प्रैक्टिकली. सेकेंड पार्ट में आर्बिट्रेशन जो फॉरेन अवार्ड है, यहाँ दो चीजें दिमाग में रखिएगा. डोमेस्टिक मैटर था, उस पर डोमेस्टिक अवार्ड आया था. अगर कोई एक पार्टी फॉरेन की हो तो ऐसे मामले में इंटरनेशनल, उसको हम लोग क्या बोले थे? कॉमर्शियल अवार्ड. इंटरनेशनल कॉमर्शियल अवार्ड भी इंडिया में सॉल्व होगा, हम सब जानते हैं. मगर ये कह रहा है कि एक आर्बिट्रेशन इंडिया के बाहर हुआ, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में एक आर्बिट्रेशन हुआ है जिसमें क्लेमेंट अमेरिकन था और जो अपोजिट पार्टी थी वो इंडियन कंपनी थी. दोनों कंपनी ने एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ज्वाइन किया और वो आर्बिट्रेशन प्लेस कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया. अब ऑस्ट्रेलिया में अवार्ड तो आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया में जो अवार्ड आया उसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन अवार्ड, क्योंकि इंडिया में नहीं आया. इंडिया में होता तो उसको हम लोग तो डोमेस्टिक ही बोलते ना. ये ऑस्ट्रेलिया में आया है तो ऑस्ट्रेलिया में आया अवार्ड फॉरेन अवार्ड है. मगर इस फॉरेन अवार्ड, चूंकि कंपनी इंडिया की थी, इन्फोर्समेंट यहाँ होना. अब जो अमेरिकन पार्टी है उस अवार्ड को इंडिया में लेके आएगी और इंडिया में लेके आएगी और इंडियन कोर्ट से कहेगी कि सर आप इसको क्या कर दीजिए, इनफोर्स कर दीजिए, क्योंकि 37 में डोमेस्टिक आर्बिट जो अवार्ड होता है वो डिक्री की तरह एग्जीक्यूट होता है. तो चूंकि इंटरनेशनल मैटर है तो हमारे भी फॉरेन अवार्ड को आप किस तरह एग्जीक्यूट कर दो, जैसे कि ये डोमेस्टिक डिक्री. तो इसके लिए जहां भारत की कोर्ट में आप फाइल करेंगे, जनरली हाई कोर्ट में कहां फाइल होता है? ये हम लोग पढ़े थे ना, फॉरेन अवार्ड का एग्जीक्यूशन कहां से होगा? हाई कोर्ट. जिस हाई कोर्ट का जुरिस्ट, मानिए उत्तर प्रदेश का मैटर है, तब यहां एग्जीक्यूट करने के लिए फिर किस कोर्ट में आना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट. तो फॉरेन अवार्ड को हाई कोर्ट से एग्जीक्यूट कराते हैं और फॉरेन अवार्ड को एग्जीक्यूट कराने के लिए जब आप हाई कोर्ट आएंगे तो सबसे पहले दो चीज देखना होगा ना, क्योंकि शेड्यूल 1 में इसके लिए डील किया गया. पहला चीज कि फॉरेन अवार्ड क्या वैलिड है, यानी पहला चीज तो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन अवार्ड. तो पहले तो वो रिकॉग्नाइज्ड हो कि सही है और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट किया जाए भारत में. तो फॉरेन अवार्ड की रिकॉग्निशन एंड एग्जीक्यूशन के लिए वैसे तो शेड्यूल 1 बना है. यहाँ पर जो चैप्टर पार्ट सेकेंड है उसमें दो तरह के इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात की गई. एक है जिनेवा कन्वेंशन, 1924 में हुआ था जिनेवा कन्वेंशन ऑन आर्बिट्रेशन, और जिनेवा कन्वेंशन का ही इम्प्रूवमेंट है न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1954 वगैरह में, तो वही 1960 में होगा ना. अब देखिए जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से रिलेटेड पहला कन्वेंशन था, उसको बोलते हैं जिनेवा कन्वेंशन। और उसके बाद जिनेवा कन्वेंशन पे इम्प्रूवमेंट आया है, कौन सा कन्वेंशन? न्यूयॉर्क। आप सब देखें पार्ट सेकेंड में दो तरह के कन्वेंशन होंगे। पहला है इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड पास्ड अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन, पहला न्यूयॉर्क वाला है ना। देखिए न्यूयॉर्क वाला 50 तक होगा, कहां तक है देखिए न्यूयॉर्क वाला 52 तक। और 52 के बाद देखिए कौन सा कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कहां है राजू? स्विट्जरलैंड ना। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? जिनेवा है। इसीलिए सारा हेड ऑफिस कहां रखा था, जितना बवाली है ना, जितना डिस्प्यूट का मैटर है सब जिनेवा में रखूंगा, मौसम ही देख के, वादियां ये नजारे कि हम मिले थे कहीं, इतना अच्छा लगता है ना कि वहां वैसे झगड़ा आपका क्या हो जाता है, बस आप कहते हैं कि लंबा चले थोड़ा, क्योंकि वहां तो उठा फेंक देते हैं ना, नहीं भागो यहाँ से, मैं नहीं पड़े रहोगे, है ना। हाँ बेटा,
स्विट्जरलैंड कैपिटल बर्न।
और जिनेवा कहाँ की है? राजधानी नहीं है,
कैपिटल नहीं, लेकिन
हाँ इसको लीगल हेडक्वार्टर बोलते हैं ना, स्विट्जरलैंड में ही है। जिनेवा कहाँ पर है? हम गए नहीं है, जब चाहेंगे तो बताएंगे तुम लोग कहाँ पे है। हाँ वो तुम लोग कुछ चंदा वंदा लगाओ तो जाके हम ढूंढ के आग बताएंगे, फोटो सेल्फी के सहित, है ना, सेल्फी खींचेंगे तब आएंगे बताएंगे। तो वैसे जिनेवा बताते हैं लोग स्विट्जरलैंड में है, बिहार साइड से नहीं जाना होता, हवाई जहाज से जाएंगे। कई लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड बिहार में है, है ना, एक है ना स्विट्जरलैंड, अच्छा वो कश्मीर ना। अरे भैया कहाँ बात करने लगे, ठंडक में गर्मी का एहसास, कश्मीर ठीक है। तो अब देखिए करना इसमें क्या होगा, फॉरेन अवार्ड आया, एक पार्टी एग्जीक्यूशन के लिए आ रही है, बट ऑब्वियस ही बात है अपोजिट पार्टी क्या कहेगी, सर ये अवार्ड वैलिड, तो पहले तो डिसाइड करेगी कोर्ट की अवार्ड जेन्युइन है कि नहीं। तो आप सब देखिए 46 कौन कौन सा टिक लगवाए थे,
44 में डेफिनेशन है,
हो वो देख लीजिएगा डेफिनेशन छोड़ दीजिए,
46 7 8
हमने
47 है
48, ये तीन टिक कर लीजिए। प्रोसीजर क्या है, जब फॉरेन अवार्ड आता है और फॉरेन अवार्ड इंडिया की कोर्ट में आता है, इंडिया की हाई कोर्ट में आता है, तो कैसे हाई कोर्ट करे, तो 46 पढ़ दीजिए।
व्हेन फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग सेक्शन 46, any foreign award which would be enforceable under this chapter shall be treated as binding for all purposes on the person as between whom it was made and may accordingly be relied on by any of those persons by way of defense set off or otherwise in any legal proceedings in India, and any references in this chapter to enforcing a foreign award shall be construed as including references to relying on an award।
ठीक है, जब भी foreign award आएगा word तो हम लोग award समझेंगे, और award का execution कहाँ से होता है, civil court यानी court से, और यहाँ court क्या है, high court। ठीक है, next
47 evidence।
हाँ
subsection 1, the party applying for the enforcement of foreign award shall at the time of the application produce before the court A, the original award or a copy thereof duly authenticated in the manner required by the law of the country in which it was made, B, the original agreement for arbitration or a duly certified copy thereof, and C, such evidence as may be necessary to prove that the award is a foreign award. Subsection 2, if the award or agreement to be produced under subsection 1 is in a foreign language, the party seeking to enforce the award shall produce a translation into English certified as correct by a diplomatic or consular agent of the country to which that party belongs to certified as correct in such other manner as may be sufficient according to the law in force in India।
बस रुकिएगा, देखिए कह रहा 47 में जो क्लेमेंट है जो फॉरेन अवार्ड को इंडिया में इन्फोर्स कराना चाहता है, अब फॉरेन अवार्ड के लिए क्या क्या चीजें देना पड़ेगा तुमको, कोर्ट में क्या क्या एविडेंस दोगे, पहला वो फॉरेन अवार्ड की ओरिजिनल कॉपी या सर्टिफाइड कॉपी उस लॉ के हिसाब से जिस देश से वो पास हुई है, और दूसरा वो जो आर्बिट्रेशन क्लॉज था ओरिजिनल जिसके थ्रू आप आर्बिट्रेशन पे गए, यदि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसकी कॉपी दीजिए। तीसरा और भी जितने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है सबकी आपको क्या लगवाना पड़ेगा, ओरिजिनल। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप सबको हल्का सा भी याद होगा तो जब आपको सीपीसी पढ़ाएंगे हम तो आप कहेंगे जब पढ़ाएंगे तो कैसे याद होगा, है ना। अजीब बहकी बहकी बातें आज हो रही है ना, बट चलो फिर भी फॉरेन जो जजमेंट होता है वो इंडिया में इनफोर्सेबल होता है, सेक्शन 13-14 ऑफ द सीपीसी। और आप लोग अभी एविडेंस एक्ट पढ़े थे, एविडेंस एक्ट में आप सबको याद होगा 86 सेक्शन एक था, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स पढ़ाए थे ना, यस 86 में था प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। और उसमें लिखा था कि अगर फॉरेन जजमेंट की ट्रू अटेस्टेड कॉपी ले आई जाए तो प्रिज्यूम होगा कि वो जजमेंट उनका कैसा है, करेक्ट है। इसी पे तो ये बेस है, कह रहा फॉरेन अवार्ड को कैसे प्रूफ करें, तो कहा उसकी ओरिजिनल कॉपी ले आओ या जो भी अटेस्टेड कॉपी ले आइए विद ओरिजिनल एग्रीमेंट लाइए, हम लोग मान लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 48।
सेक्शन इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ दें,
छोड़ देना 48। यहाँ भी देसी समझ में नहीं आया, विदेशी का समझ में आएगा, है ना।
सेक्शन 48 कंडीशंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड। सब सेक्शन 1 Enforcement of a foreign award may be refused at the request of the party against whom it is invoked only if that party furnishes to the court proof that A. The parties to the agreement referred to in section 44 were under the law applicable to them under some incapacity or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or failing any indication thereon under the law of the country where the award was made, or B, the party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case, or C, the award deals with the difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission of to arbitration, or it contains decision on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that if the decision on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decision on matters submitted to arbitration may be enforced, or D, the composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or failing such agreement was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place, or E, the award has not yet become binding on the parties or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which or under the law of which that award was made. सबसेक्शन 2।
बस रुकिए, देखिए मेंस में या एक लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन कोर्ट रिफ्यूज टू इन्फोर्स द फॉरेन अवार्ड, ऑन व्हाट ग्राउंड कोर्ट रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट अ फॉरेन अवार्ड। तो कह रहा है 48 में जब अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन करे, और ऑब्जेक्शन में क्या ऑब्जेक्शन करे कि सर पार्टी आर्बिट्रेशन के लिए कॉम्पिटेंट, यानी हम लोग का कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था ही नहीं, यानी पहला। दूसरा, आर्बिट्रेशन जो अवार्ड आया है वो आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है, और जो उनको काम दिया गया था, जो मैंडेट दिया गया था, वो आउटसाइड द मैंडेट काम कर गए। अगर वो सेपरेबल नहीं है तो पूरे आर्बिट्रेशन अवार्ड को नल एंड वॉइड यानी रिफ्यूज कर देंगे। तो 48 में वो ग्राउंड्स हैं, आपके दिमाग में बस होना चाहिए, क्योंकि इस एक्चुअली फॉरेन अवार्ड पे हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा आया, फिर भी थोड़ा सा एक जानकारी होनी चाहिए। तो फॉरेन अवार्ड में 46, 47 और 48 हम लोग पढ़ लेंगे, 48 में कब रिफ्यूज होगा। अच्छा, जब फॉरेन अवार्ड एग्जीक्यूट करोगे तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, एज अ डिग्री, अगर वैलिड पाई गई तो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी एज इफ इट इज अ डोमेस्टिक अवार्ड, यानी एज अ डिग्री, यानी जो हम लोग पढ़े थे ना अभी 36 में ना, ठीक। और चलिए
सबसेक्शन टू एनफोर्समेंट, छोड़ दें।
अब आइए पार्ट थर्ड पे आ रहे हैं। ये तो हो गया, फॉरेन अवार्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब किस पे आ रहे हैं हम लोग? बिकॉज यू ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हैज गिवन मी अ फोर डेज, आई हैव टेकन अ फोर डेज ना, तो दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू अटेंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस आर्बिट्रेशन, दैट इज कंसीलिएशन। कंसीलिएशन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। कंसीलिएशन है 61 से लेकर 80 या 81 तक, ठीक। कंसीलिएशन सुलह, आर्बिट्रेशन का हिंदी क्या बोलते हैं? मध्यस्थता ना। आर्बिट्रेशन है मध्यस्थता और कंसीलिएशन मध्यस्थम, कंसीलिएशन है और आर्बिट्रेशन को मध्यस्थता बोलते हैं, मध्यस्थम, और कंसीलिएशन को सुलह। तो देखिए सुलह है, कंसीलिएशन। देखिए आर्बिट्रेशन में क्या था, हम लोग जैसे लिटिगेशन सॉल्व कराते हैं कोर्ट से ना, तो लिटिगेशन में प्रिजाइड कौन करता है? एक कोर्ट है ना, जज। तो लिटिगेशन में जब जज प्रिजाइड करे तो वो लिटिगेशन है, वो सूट है। और वही लिटिगेशन अगर आप प्राइवेट फोरम से फॉर्मली आप जाएं, बट प्राइवेट फोरम से एडजुडिकेट कराएं, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। क्योंकि आप चाहते हैं समय बच जाए, पैसा बच जाए, जल्दी से हमारा मैटर सॉल्व हो जाए। और मगर आर्बिट्रेशन में भी दिमाग में रखिएगा, मैंने भेजा था, आर्बिट्रेशन में भी जो आर्बिट्रेटर है एक्चुअली काम तो जज की तरह ही कर रहा है ना। दो पार्टी का क्लेम मांगा, दूसरे से उनका डिफेंस मांगा, अकॉर्डिंग एविडेंस लिया, ओरल आर्ग्यूमेंट कराया, ओरल आर्ग्यूमेंट के बाद एक जजमेंट पास कर दिया, जिसको आपने क्या बोला? अवार्ड। अब दोनों पार्टी चाहती है हम एक आर्बिट्रेटर ना लाए, एक फैसिलिटेटर खड़ा करें। ए और बी जो डिस्प्यूटिंग पार्टी, वो चाह रही है कि हम एडजुडिकेशन ना कराएं। एडजुडिकेशन मतलब न्याय निर्णय, एडजुडिकेशन ना कराएं। हम चाहते हैं कि एक आदमी ऐसा जो हम दोनों की बातों को सुनकर एक म्यूचुअल टर्म्स दे, जिसपे हम दोनों कंसिलिएट कर जाएं, एग्री कर जाएं, और हम लोग एग्रीमेंट साइन कर दें, मैटर एंड हो जाए। वी डोंट वॉन्ट जजमेंट, वी वॉन्ट टर्म ऑफ कंप्रोमाइज। हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा एक आदमी हो जो हम दोनों की बातों को सुनने के बाद एक बीच का रास्ता निकाल दे और हम दोनों उस पर क्या हो जाएं? एग्री कर जाएं। दिस इज कॉल्ड कंसीलिएशन। आर्बिट्रेशन में आपने पढ़ा था एक या तीन, कंसीलिएशन में हमेशा सोल आर्बिट्रेटर होता है, सॉरी सोल कंसीलिएटर होता है। कंसीलिएशन में क्या होगा? हमेशा सोल कंसीलिएटर होगा, दोनों पार्टी को सुनेगा और क्या कहेगा? कहेगा आप लोग अपना अपना लाइए, क्या बात आप लोग कहना चाहते हैं, इन राइटिंग लिख के दीजिए। लिखने के बाद जब दोनों को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद दोनों से सुन लेगा, सुनने के बाद कुछ टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज यानी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट देगा कि आप लोग देखें अगर इतने इतने पे आप लोग तय कर लीजिए तो आप लोग का मामला सॉल्व हो सकता है। यहाँ वो जज के रूप में काम नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रहा है। कंसीलिएशन में वो अपनी ओर से कुछ नहीं रखता है, दोनों को एक, जैसे एक शब्द होता है ना एडीआर में, जब आप लोग पढ़ेंगे तो शब्द होता है वैसे, तो जैसे मीडिएशन, नीगोशिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसील। मीडिएशन में थोड़ा ज़्यादा रोल प्ले करता है मीडिएटर। देखा ना आप लोग कभी जाओ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट वाले में, तो पति पत्नी के झगड़े को पहले किसके पास भेज देते हैं? हम लोग पढ़े ना हिंदू मैरिज एक्ट में 23B ना, सबसे पहले किसके पास भेजते हैं मैटर को? मीडिएटर। मीडिएटर के पास दोनों कौं करते हैं, मीडिएटर कहता है हमारा बस 3,000 रुपये फीस दे दो, उसके बाद जो चाहो कर लो, जिसको जो अपने घर पे मैटर नहीं सॉल्व करा पाया उसका हम क्या करेंगे, वो खूब जानता है, कहता है ये सब माथा पच्ची है, जो तय करके कोर्ट में आ गया क्या उसका मैटर सॉल्व होगा? नहीं, जिसका सॉल्व होना होता है वो आपस में मैटर कोर्ट तक जाएगा ही। द पार्टी विच हैज डिसाइडेड टू एंड आवर रिलेशनशिप, और जिसने अपने मैटर को पब्लिक कर दिया, अब क्या मैटर वो शांत हो जाएगा? पत्नी ने वो 498A का डाल दिया, दहेज डाल दिया 3/4, डाउरी और ये वो करके उसको बंद भी करा दिया डोमेस्टिक वायलेंस में, उसका खानदान बंद है, उसका निकला करें, आओ कॉम्प्रोमाइज करें। हाँ तो अब वो तो होगा एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है बेटा होता है, ए आओ तुम शुरू करो। महिला थाने तक बात चली गई, बड़ा डर लगता है। अब तो खैर हम लोग का तो हो गया ना, 10-12-15 साल शादी हो गए तो अब टेंशन खत्म, वरना शुरुआत की शादी में आदमी अभी एक साल पूरा नहीं हुआ कि 2-3 चक्कर तो कहाँ पार कराया है, महिला थाने में बुलाया गया, आइए आप जरा, वहाँ गया हाँ वो कुछ माफी भी मांग के पिल लेके आए, बाबू चलो घर, है ना, होता है, महिला थाने का नाम सुनते ही डर केवल किस चीज पे लगता है, काहे का डर लगेगा, महिलाएं तो सबसे आगे हैं। आज एक महिला देखिए स्क्वाड्रन लीडर है ना, 2015 बैच की है इंडियन एयरफोर्स की, स्क्वाड्रन लीडर है, फर्स्ट वीमेन जो है वो मेरे ख्याल से मिजोरम या कहाँ के गवर्नर की सेकेंड इन कमांड बनाई गई है, वो फर्स्ट है एडवाइजर जो बनी है, आज ही तो न्यूज़ में ऑल इंडिया रेडियो में आ रहा था, वो नाम मुझे नहीं याद है, पर वो फर्स्ट करके है, फर्स्ट लेडी है जो स्क्वाड्रन लीडर है एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की, 2015 की है वो, 2015 में इंटर की थी, उनको एडवाइजर टू क्या बनाया गया है, अब उनकी योग्यता वगैरह देखी गई होगी, उनको मिजोरम या कहीं के गवर्नर का, गवर्नर मिस्टर कुछ है मैंने, वो न्यूज़ पे आता रहता, उनकी क्या बनाया गया उनको, वो कुछ वर्ड है वो मैं भूल जा रहा हूँ, वो शब्द है वो उनको बनाया गया है, ADGC शायद कुछ ADC, हाँ कुछ इसी तरह का शब्द है वो, ये GS के लिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वीमेन टू बिकम सेकेंड एडवाइजर टू गवर्नर ऑफ द मिजोरम, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंसिलिएशन पे कुछ चीजें टिक करने चल रहे हैं, लेट अस स्टार्ट द कंसिलिएशन सुलह। हाँ मनिका पाड़ी, ये क्या बनी है, ADC फर्स्ट ना, एडवाइजर फर्स्ट बनी है मनिका पाड़ी, हाँ ये वहां की है ना मिजोरम, हाँ बेटा
सर मनीषा नाम है उनका,
मनीषा नाम है बेटा, हाँ अच्छा मनीषा,
मनीषा ही बोल रहा है,
कानपुर में थोड़ा हंगामा हो रहा आजकल है ना, वो मणिका ये उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की है, इनका नाम आज न्यूज में चल रहा था, जैसे बालकनाथ जी का नाम चल रहा है ना, अब बनेगा नहीं बनेगा हम थोड़ी ना RSS चीफ में बताएंगे यार तुम्हें बनेगा नहीं, हम तो बता रहे नाम चले रहा है उनका, ऐसे चचा बोलते हैं कि बनेगा, ऐसे लोग सट्टा लगाते हैं हारते हैं फिर काहे बनेगा ऐसे, भाई ये तो विधायक दल की क्या होती है, हर जगह एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है जिसमें विधायक दल चुनते हैं एक नेता, मगर राजस्थान में एक नया एकदम चेहरा 34 ईयर्स के हैं, एक सन्यासी हैं, क्या नाम है उनका, कुछ मिस्टर बालकनाथ शायद, हाँ योगी बालकनाथ है वो, उनका नाम आगे जा रहा है, तो है बेटा हाँ आ सकता है, बन सकते हैं वो लोग, भाई योगी वगैरह ही आजकल देश संभाले तो हम तरह के गृहस्थ काम आएंगे तब, है ना भाई, गृहस्थ लोग घर संभाले और योगी लोग क्या संभाले, देश संभाले, उनका एक कोई परिवार नहीं होता ना, पूरा देश परिवार, हमारे ऐसा आदमी बना दोगे तो हम सोचेंगे हमारे भाई कुछ मिल जाए, इनको मिल जाए, है ना, हमारे लड़के जुगाड़ बन जाए, ये सब इसलिए परिवार वाला नहीं बनना चाहिए, कौन बनना चाहिए, हाँ जिसका कहीं कोई वो ना हो, तब उसके लिए पूरा देश ही अपना क्या बन जाता है, परिवार, ये पॉजिटिव थिंकिंग की बात,
प्योर नेपोटिज्म,
हाँ भाई नेपोटिज्म तो हमारे ब्लड में है ना पूरा, तो आप कोर्ट का स्ट्रक्चर नहीं देखें, चलो
पार्ट थर्ड कंसिलिएशन सेक्शन 61 एप्लीकेशन एंड स्कोप छोड़ दीजिए और सेक्शन 62 पे
टिक है,
टिक कर लीजिए,
हाँ सेक्शन 62 अब टिक करते चलिए और पढ़ाते चलेंगे, इसमें कोई बहुत समझाना नहीं,
कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग नंबर सब सेक्शन 1 द पार्टी इनिशिएटिंग कंसिलिएशन शैल सेंड टू द अदर पार्टी अ रिटन इनविटेशन टू कंसिलिएट अंडर दिस पार्ट briefly identifying the subject of the dispute. Subsection 2. Conciliation proceedings shall commence when the other party accepts in writing the invitation to conciliate. Subsection 3. If the other party rejects the invitation, there will be no conciliation proceedings. Subsection 4. If the party initiating conciliation does not receive a reply within 30 days from the date on which he sends the invitation, or within such other period of time as specified in the invitation, he may elect to treat this as a rejection of the invitation to conciliate, and if he so elects, he shall inform in writing the other party accordingly.
देखिए conciliation के लिए क्या होता है कि एक party, यहाँ कोई देखिए conciliation क्लास तो होगा नहीं, आपने arbitration का जन्म कहाँ से पाया था, section 7, एक arbitration क्लास होना, conciliation के लिए कोई क्लास की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर क्या है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को नोटिस भेजेगी कि आई वॉन्ट टू सॉल्व आवर डिस्प्यूट बाई कंसीलिएशन, अगर आप चाहें तो आप कंसीलिएशन के थ्रू हम लोग अपना मैटर सॉल्व कर लें, और इसके लिए जो नोटिस देता है वो कितने दिन वेट करेगा, 30 डेज, 30 दिन तक वेट करेगा। अगर अपोजिट पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर कंसीलिएशन के लिए कंसीलिएटर वो दोनों मिलकर अपॉइंट करें और कंसीलिएशन प्रोसीडिंग में जाए, अगर अपोजिट पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया या 30 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया तो फिर जिसने नोटिस भेजा वो मान लेगा, इलेक्ट कर लेगा कि कंसीलिएशन की चाहत अपोजिट पार्टी के पास, तो फिर या तो आर्बिट्रेशन में मैटर चला जाएगा या जैसे भी केस सॉल्व हो। तो कंसीलिएशन का कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, जबकि आर्बिट्रेशन का जन्म कहाँ से हुआ, बाई एन रिटर्न आर्बिट्रेशन क्लॉज अंडर सेक्शन 7 हम लोग पढ़े थे ना, ठीक। और नेक्स्ट चलिए,
नंबर ऑफ कंसीलिएटर सेक्शन 63,
हाँ,
सब सेक्शन 1, देयर शैल बी वन कंसीलिएटर अनलेस द पार्टीज अग्री दैट देयर शैल बी टू और थ्री कंसीलिएटर।
अच्छा देखो, एक कंसीलिएटर जनरली कितना कंसीलिएटर होगा, एक, मगर दो भी हो सकता है और तीन भी। यहां देखो इवन आर्ट की बात नहीं की गई है, जबकि सेक्शन 10 में आप क्या पढ़े थे, ऑड नंबर्स, क्योंकि वहां जज के रूप में बनाना था, यहाँ जज नहीं है, यहाँ तो कंसिलिएटर बना रहे, वो मिलके एक टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट देगा कि आप लोग चाहें तो इस मैटर पे सामने वो सहमत हो जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कंसिलिएटर एक होगा या दो भी हो सकता है या तीन, यहाँ इवन आर्ट का कोई नहीं। तो दूसरा डिफरेंस क्या हो गया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में, कि सर वहां नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर का बहुत, वहां ऑड होना चाहिए, यहाँ इवन हो या ऑड हो। और चलिए
Subsection 2, where there is more than one conciliator, they ought as a general rule to act jointly.
ठीक है, next.
Section 64, 5, 6, 7, 8, 9, सब छोड़ दीजिएगा. Section 70 पे सीधे आ जाइए. Disclosure of information. When the conciliator receives factual information concerning the dispute from a party, he shall disclose the substance of that information to the other party in order that the other party may have the opportunity to present any explanation which he considers appropriate.
ठीक है, ये भी कोई मत करना।
Provided that when a party gives any information to the conciliator subject to a specific condition that is kept confidential, the conciliator shall not disclose that information.
जो चीजें confidential लगनी है वो confidential रखेंगे और बाकी चीजें opposing party को बता दी जाएंगी। ठीक है, इसमें भी कोई वो नहीं।
फिर सीधे 73 पे है कि सेटलमेंट एग्रीमेंट।
हाँ, ये आइए, सेटलमेंट किस टर्म पे वो लोग सेटल हो रहे हैं।
सबसेक्शन 1, व्हेन इट अपीयर्स टू द कंसीलिएटर दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेटलमेंट व्हिच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, ही शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ द पॉसिबल सेटलमेंट एंड सबमिट देम टू द पार्टीज for their observations. After receiving the observations of the parties, the conciliator may formulate the terms of a possible settlement in the light of such observations.
देखिए 73 क्या कह रहा है, दोनों पार्टी का क्या पहले ले लिया जाएगा, submissions लेते हैं ना, दोनों पार्टीज पूछेंगे अपना अपना, आप लोग पोजिशन दीजिए क्या क्या आप लोग कहना चाहते हैं, उसके बाद क्या करता है वो रखता है और टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो अपना ऑब्जर्वेशन लेके दोनों पार्टीज को भेजता है कि आप लोग इस टर्म्स को देखिए, क्या ये टर्म्स पे कोई सेटलमेंट बन सकता है। अब दोनों पार्टी की सुनने के बाद, उसके बाद उनका एक्सेप्ट करने के बाद एक टर्म ऑफ सेटलमेंट बनाता है और फिर दोनों पार्टीज को देता है कि इस टर्म्स ऑफ सेटलमेंट में आप चाहें तो आप दोनों एग्री हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। हाँ,
Subsection 2. If the parties reach agreement on a settlement of the dispute, they may draw up and sign a written settlement agreement. If requested by the parties, the conciliator may draw up or assist the parties in drawing up द सेटलमेंट एग्रीमेंट,
अगर वो लोग एग्री हो गए तो वो फिर कंसिलिएटर मदद करेगा उन दोनों की कि एक टर्म ऑफ सेटलमेंट, एक एग्रीमेंट साइन हो जाए, ठीक है।
सबसेक्शन 3, व्हेन द पार्टीज साइन द सेटलमेंट एग्रीमेंट इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम रेस्पेक्टिवली।
ये क्या कह रहा, अगर एग्रीमेंट फाइनल हो गया और दोनों पार्टी ने सेटलमेंट ऑफ एग्रीमेंट पे साइन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये फाइनल हो गया और इसका जो इक्विवेलेंट टू अवार्ड हो जाएगा। अवार्ड आपने पढ़ा था ना, 35 में फाइनल था, और उनका इन्फोर्समेंट कैसे होता है, डिक्री की तरह, देखिए भी आएगा।
4, सबसेक्शन 4, द कंसीलिएटर शैल ऑथेंटिकेट द सेटलमेंट एग्रीमेंट एंड फर्निश अ कॉपी देयर ऑफ टू ईच ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 74, स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट।
अब जो सेटलमेंट एग्रीमेंट दोनों पार्टी ने साइन कर दिया, जो फाइनल कंक्लूजन आ गया, साइन कर दिया, उसका क्या स्टेटस होगा, 74 में बता रहा है कि जो सेटलमेंट में दोनों एग्री कर गए उस पे साइन हो गया, अब वो अवार्ड बन जाएगा। देखिए,
द सेटलमेंट एग्रीमेंट शैल हैव द सेम स्टेटस एंड इफेक्ट एज इफ इट इज एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन अग्रीड टर्म्स ऑन द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट रेंडर्ड बाय एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 30।
याद आया, अगर दोनों एग्री कर गए और दोनों ने टर्म्स ऑफ सेटलमेंट पे साइन कर दिया और फिर फाइनली कंसिलेटर भी साइन कर देता तो ये क्या बन जाएगा, एक आर्बिट्रल अवार्ड बन जाएगा। और आर्बिट्रल अवार्ड आप जानते हैं 35 में फाइनल होता है, बाकी सब्जेक्ट टू, और फाइनल हो गया और 36 में उसको क्या कर सकते हो तुम लोग, वो डिक्री की तरह इन्फोर्स होगा। हाँ,
सेक्शन 75 कॉन्फिडेंशियलिटी है, पढ़े किसको,
नहीं छोड़िए, कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर को क्या रखा जाना चाहिए, ठीक है।
76 टर्मिनेशन ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग।
अच्छा, टर्मिनेशन कब होगा, मैंडेट कब समाप्त होगा, जब फाइनल हो गया तो प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है।
सेक्शन 77, रिसॉर्ट टू आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, द पार्टीज शैल नॉट इनिशिएट ड्यूरिंग द कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स एनी आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट that is the subject matter of the conciliation proceedings except that a party may initiate arbitral or judicial proceedings where in his opinion such proceedings are necessary for preserving his rights।
देखिए 77 है ना, क्या कह रहा है कि जब conciliation की proceeding चल रही है, when the proceeding of conciliation is going on, इसके बीच में आप कोई entry में order or injunction या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग या आर्बिट्रेशन, यानी कंसिलिएशन चल रहा है उसी में एक पार्टी करी हम जा रहे हैं आर्बिट्रेशन कराने, हम रूट गए, तो ये संभव नहीं है। जब कंसिलिएशन चल रहा है तो बाकी चीजें बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये एग्रीमेंट का प्रोसेस है। अच्छा, वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू क्या? अच्छा ये बताओ, जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही तो उसके बीच में कंसिलिएशन हो सकता है? सेक्शन 30 देखो, When arbitration proceeding is going on, whether conciliation is possible?
Yes, sir, हो सकता है।
Section 30 है, देखिए। है ना? Section 30 है ना, देखिए। अब Section 30 देखिए, इसी का just opposite है 77। Section 30 का opposite कौन सा है? 77। देखिए 30 में लिखा होगा, during arbitration conciliation में जा सकते हैं। मिला? Mediation and तो अब आप अपने IQ यानी नॉलेज बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, पार्टी कैन अप्रोच फॉर मीडिएशन और कंसी इन सेक्शन 30, बट वाइसी वर्सा इज नॉट ट्रू अंडर सेक्शन 77, ड्यूरिंग कंसीलिएशन नो आर्बिट्रेशन और जुडिशियल सेटलमेंट इज पॉसिबल। इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, 30 का जस्ट रिवर्स है 77। तो ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन इज पॉसिबल सेक्शन 30, बट ड्यूरिंग कंसिलिएशन 77 प्रोवाइड्स नो आर्बिट्रेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग इज पॉसिबल। देख लीजिए एक बार, लिख लीजिए अपना अपना। और देखो इसके बाद कौन सा,
इसके बाद तो इसमें और टिक है नहीं कोई, सीधे फिर पार्ट फोर्थ सप्लीमेंट्री प्रोविजन आ जाता है।
78 क्या है,
कॉस्ट
छोड़ दीजिए, 79
डिपॉजिट
ये भी छोड़िए, 80
रोल ऑफ कंसीलिएटर इन अदर प्रोसीडिंग्स,
81
एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन अदर प्रोसीडिंग्स,
ये खत्म ना। और आप कहोगे साहब चैलेंज इसमें आया नहीं, अरे कंसेंटिंग पर्सन सफर्स, ये तो कोई मुरक्का तो नहीं करेगा ये बात, सर अपील नहीं है इसमें, अपील कैसे होगी, वॉलंटी नॉन फिट द कंसेंटिंग पर्सन सफर्स नो रॉन्ग। यहां पर आप तो कंसिलिएशन में समझौता किए हो ना, जब समझौता किए हो तो हम सब जानते हैं कंसेंट डिग्री की अपील नहीं होती है, तो यहां इसीलिए कोई अपील का प्रोसेस नहीं है, सेटिंग असाइड का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो कंसिलिएशन में जो हम लोग को जानना था कि आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में क्या डिफरेंस होता है, इसके कुछ सेक्शंस को देखें, मगर मैं फिर बता रहा हूं जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं ना उस सारे क्वेश्चन आर्बिट्रेशन से आए, जितना क्वेश्चन वो सब कहां से कन्फाइन कर रहा है, वही 37 तक कन्फाइन कर रहा है, ऑल द क्वेश्चन कन्फाइन टू 37, बट फॉर बेटर नॉलेज वी हैव स्टडीड दिस वन, इसको हम लोगों ने अपने अच्छे ज्ञान के लिए सोचा कि पढ़ लें, क्योंकि इस जीवन के रथ को ज्ञान के रथ से, जीवन के पथ को किसके थ्रू, महापुरुष अमिताभ बच्चन, प्रातः स्मरणीय अमिताभ बच्चन जी, लंबी जिए अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, जीवन के पथ पे ज्ञान के रथ से आप पार करिए तो बता रहे हैं अग्निपथ में चले जाओगे, बेहतरीन अग्निपथ में कहा ही जाओगे जी, उड़न पथ पे जाओ ना। ये पूरा देखिए, जो पूरा एक सिनॉप्सिस था उस पे दिमाग में एक रखिएगा, क्या आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग को सप्लीमेंट कर रही है कि सब वो कर रही है, चेंज कर रही नहीं, रिप्लेस नहीं कर रही है ना। हम लोग एक लॉजिक पढ़ते हैं ना शुरुआत में, पहले दिन हमने बताया था आर्बिट्रेशन इज नॉट टू सप्लांट बट टू सप्लीमेंट, रिप्लेस नहीं कर रहे हम लोग, हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग की सपोर्ट के लिए एक और प्रोसीडिंग लेके आए, ये हमेशा उसको सप्लीमेंट करेगी, ओवरराइड। तो नेवर एंड नेवर एंड नेवर आप हमेशा लिखिएगा ये शब्द कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज टू सप्लीमेंट द जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड नॉट टू रिप्लेस आर सप्लांट द जुडिशियल प्रोसीडिंग, कभी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं खड़ी होगी, उसको मदद उसकी सहायता करने के लिए है, जो उसका लोड है उसको थोड़ा कम करने के लिए, बस ओवरबर्डन जो है उसको जुडिशरी के ओवरबर्डन को कम करने के लिए। आर्बिट्रेशन इज टू सप्लीमेंट एंड नॉट द सप्लांट, सप्लीमेंट समझ गए ना, आप लोग खाते होंगे ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, सचिन कितना बूस्ट पिए लंबे हो गए, देखा कंप्लेंट पीते थे वो, हाँ बता रहे हैं कंप्लेंट पीते थे, क्या कंप्लेंट से ही जिंदगी कट सकती है, खाना तो खाना पड़ेगा ना, दीज आर द, तो उसी तरह मेन फूड एलिमेंट तो जुडिशियल सिस्टम है, उसके साथ बूस्ट, जैसे हमारे उम्र में हार्लिक्स पिया जाता है, बुजुर्ग लोग हार्लिक्स पीते हैं, ब्रॉम्बिना हमारे लिए, बॉम्बिटा जवान लोग, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो बौरा पीने नहीं, ये समझ में आ गया तुम लोग को, ज्यादा ज्यादा
समझदार बच्चे हैं सब,
मोयो मोयो मोए मोयो, अच्छा हमें कुछ बच्चे कल सुनवाए, हम सुने हमको सम पकड़े में नहीं आया, काहे काहे इतना फेमस हो गया मोए मोए, हमारे जमाने में था ओए ओए, वो फेमस हुआ था। ये मोए मोए नहीं समझ में आया हमको। मगर ठीक है, हो सकता हमारी ज्ञान की अल्पता हो, सीमित ज्ञान हो तो समझ में आता। एक आध और सेक्शन है इसको, हाँ सुनो। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग या आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट इज टू सप्लीमेंट द जुडिशियल सिस्टम। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज टू सप्लीमेंट द जुडिशियल सिस्टम एंड नॉट टू सप्लांट, नॉट टू सप्लांट। सप्लांट को ब्रैकेट में लिख लेना, रिप्लेस, नॉट टू रिप्लेस आर सप्लांट द जुडिशियल सिस्टम। और इसमें बता दीजिए, एक आध और सेक्शन है रूल मेकिंग, देख लीजिए हाई कोर्ट बना रही कौन रूल।
पार्ट फोर्थ सप्लीमेंट्री प्रोविजन सेक्शन 82 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल।
कौन रूल्स बनाएगा इस पे? हाई कोर्ट। देखिए,
द हाई कोर्ट में मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट एज टू ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट अंडर दिस एक्ट,
बिफोर द कोर्ट अंडर दिस एक्ट। और देख लीजिए, मेरे पास बाकी पढ़ा चुके हैं।
83 है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, फिर पावर टू मेक रूल्स 84 है सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मे मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस
एक्ट, पढ़ा चुके थे वो।
रिपील एंड सेविंग हो चुका है,
हटा दिए थे उस। इस तरह से देखिए तो आप लोग चार दिनों में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 को हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें चार पार्ट थे। इसके सारे बेसिक विद इसके केसला, जैसे मैंने बोला था अशोक टेडर्स वगैरह अच्छे अच्छे केसेस थे ना, सलूजा वाला केस था, सारे केसेस भी हम लोगों ने भेजे हैं। और इसमें हम सबों ने जो एक टाइम इन्वेस्ट किया, आई थिंक ये हम सबको अगर दिल्ली देने जा रहे हैं तो ठीक ही है, देंगे ही देंगे। और नहीं भी दिल्ली आप दे रहे हैं तो भी आप में बिहार और दिल्ली की बात ही नहीं है, इट विल इन्हेंस योर कॉन्फिडेंस। देखिए इससे आपको क्या बढ़ता है, जब आप कोई ऐसा एक्ट पढ़ते हैं जो हमारे चारों ओर चल रहा हो, ये हर जुडिशरी हर कचहरी में तो आर्बिट्रेशन बैठा हुआ है। एडीआर का काम क्या है भाई, एडीआर के थ्रू ही आपको कहां भेज रहे हैं। अगर आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है तो भी कोर्ट कहां भेज दे रही है आपको आर्बिट्रेशन में। यानी ये मैंडेटरी है कि हर हर डिस्ट्रिक्ट में अब क्या बनेगा, एक आर्बिट्रेशन एक कोर्ट बनेगी ही बनेगी। तो वो बने उसके पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं, हम ही बनाऊ ना आप ही लोग को, हमारा मतलब ठीक। आर्बिट्रेशन पढ़े, उसके साथ फॉरेन अवार्ड पढ़े, कंसिलिएशन पढ़े। दिस इज द एंड ऑफ दिस शॉर्ट टर्म ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। और आज की बात फिर कल से, यानी कल से एक या दो दिन आप सब बेरेक्ट लाएंगे द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट हमेशा सीपीसी का भाग समझा जाता है, प्रोसीजरल लॉ का पार्ट है। तो आपको नोट्स हम सब ने भेज ही दिया था, ठीक है। कल लिमिटेशन एक्ट की बेरेक ले लीजिएगा और कल से शुरुआत करेंगे, कल या परसों जितने दिन में निपट जाएगा उसके आगे हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे अपना रेजिड्यू, जो एविडेंस बचा हुआ है वी विल स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच।